शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 FM पर हेलो हल्द्वानी। ये एक सामुदायिक रेडियो है जिसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है और इस रेडियो को आप 91.2 MHz की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। इस रेडियो में जहां हम एक तरफ समुदाय से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं, जो कि समाज में रहने वाले लोगों को कई तरह की जानकारियां देते हैं और उनमें जागरूकता लेकर आते रहते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी हम कई तरह की जानकारियां इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। तो ऐसी ही एक जानकारी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार भट्ट, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इनकी आज की जानकारी का विषय है मशीन लर्निंग।
हेलो हल्द्वानी सुनने वाले सभी लर्नर्स को मेरा नमस्कार। ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार भट्ट, एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से हूँ। आज मैं मशीन लर्निंग के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग टॉपिक है, जिस पे बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी तरह की अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स चल रही हैं और बहुत ज़्यादा रोजगार परक कोर्सों में इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो ये अपने आप में ही एक रोजगार परक सब्जेक्ट है। तो होता क्या है कि 1950 में जब AI की शुरुआत हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई, तो उस वक्त टिक टैक टो गेम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन हुआ करता था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई नई खोजें होती रही, तो उसके साथ साथ ही मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इस तरह से जेनेटिक एल्गोरिथम, बहुत सारी नए कोर्सेज और नए नई खोजें हुई और जिसका बहुत ज़्यादा फायदा आज के समय में होता है। जो आज का युग है वो इंडस्ट्री 4.0 का युग है। आज हम IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह से बहुत सारी नई तकनीकों को प्रयोग करते हैं। कंप्यूटिंग की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय प्रोग्राम बनाए जाते थे और प्रोग्रामर जो है वो बहुत कठिन कठिन प्रोग्राम डेवलप करते थे और उन प्रोग्राम्स के आउटपुट के आधार पर प्रोसेस होती थी, ऑटोमेशन होता था। परंतु जब से डीप लर्निंग आई तो डीप लर्निंग में कुछ नई तरह की प्रोग्रामिंग होती है। होता क्या है कि ये जो डीप लर्निंग है या मशीन लर्निंग है या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस करता है और जहां पे डेटा लीनियर नहीं होता है, नॉन लीनियर डेटा होता है जहां पे, वहां पे ये बड़ा कामयाब सिद्ध होता है और इसका प्रयोग जो है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए होता है और ये बड़े आसानी से उनको सॉल्व कर लेता है। तो जहां पे डेटा कॉम्प्लेक्स है वहां पे हम मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, परंतु इसके प्रोग्राम बहुत सिंपल होते हैं। तो जो AI है, सबसे पहले AI टर्म आया जब 1950s में जब शुरुआत हुई, तो उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता था, AI ही था उस वक्त। तो धीरे धीरे जब खोजें हुई तो उसके बाद टर्म चेंज हुए और इसका सबसेट था मशीन लर्निंग। और आज के समय में मशीन लर्निंग से भी अगर हम आगे बढ़ के देखें तो आज के डेट में, आज के समय में हम डीप लर्निंग की बात करते हैं। जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है तो हम वहां पर डीप लर्निंग की बात करते हैं। तो हमको क्या करना होता है, डीप माइनिंग, इसमें क्या होता है, डीप माइनिंग करके डीप लर्निंग होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और आज की प्रोग्रामिंग में। और दूसरे तरीके से देखें तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हमारे पास डेटा और प्रोग्राम होते थे और हम उसके बेसिस पे आउटपुट निकालते थे, मतलब हम प्रोग्राम डेवलप करते थे और वो प्रोग्राम किसी न किसी डेटा को लेकर के आउटपुट जनरेट करता था। परंतु जो मशीन लर्निंग है उसमें क्या होता है कि हमारे पास इनपुट भी है, मीन्स डेटा भी है और आउटपुट भी है, इनपुट भी है आउटपुट भी है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेचर है जिसको हमने प्रोसेस करना है, कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको प्रोसेस करना है, मतलब हमारे पास इनपुट डेटा है, हमारे पास आउटपुट हमारे पास है। मतलब जैसे हम देखें कि फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग है, तो वेदर का डेटा बहुत ज्यादा डेटा होता है। आपने पिछले 10 साल का डेटा अगर हम मान के चलें, प्रतिदिन हमारे दिन में हम 20 रीडिंग ले रहे हैं, तो हर रोज की 20 रीडिंग और पूरे महीने पूरे साल इसी तरह से 10 साल का अगर हम डेटा लें तो कितना ज्यादा डेटा होगा। तो इतना लार्ज अमाउंट में डेटा को हम प्रोसेस करते हैं किसके थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू। तो यहां पे डेटा भी है और आउटपुट भी है। आउटपुट हमको पता है कि जब हमारे पास ये डेटा है तो रेन बहुत ज्यादा हुई या कम हुई, ये हमको सब मालूम है पहले से। हमारे पास इनपुट भी है, हमारे पास आउटपुट भी है। तो हम क्या करते हैं कि 10 साल के इनपुट और आउटपुट को हम कंप्यूटर को में फीड करते हैं और मशीन लर्निंग उसको प्रोसेस करती है और प्रोग्राम भी डेवलप करती है और उसके अकॉर्डिंग पैटर्न या ट्रेंड बताती है कि आगे भी वो प्रिडिक्शन भी हम कर सकते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह का इसका यूज है। तो ये इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन जहां पे हम मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो ये मशीन लर्निंग है, ये अनसर्टेनिटी जहां पे होती है उसको डील करता है, जैसे स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग है। अब स्टॉक के जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करते हैं। अगर आप देखें कि कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है, सरकार बदलती है, तो भी प्राइस चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कहीं दो कंट्रीज के बीच में युद्ध हो रहा है तो तब भी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं। इसी तरह से मौसम चेंज हो रहा है तो भी प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। किसी कमोडिटी के प्राइस अप डाउन हो रहे हैं, जैसे पेट्रोल के प्राइस हाइक हो गए तो आपका स्टॉक मार्केट चेंज हो जाएगा। तो जहां पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उस कंडीशन में सॉफ्ट कंप्यूटिंग या मशीन लर्निंग के थ्रू प्रोसेस करना बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो इसी तरह से इसके जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग के हैं या मशीन लर्निंग के हैं, इसके अंदर फजी लॉजिक भी यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसको ANN कहते हैं, इसका भी यूज होता है। डीप न्यूरल नेटवर्क DNN भी इसी के अंदर अंतर्गत आता है। तो ये पैरेलल कंप्यूटेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। तो सीक्वेंशियल जहां पे होता है, सीक्वेंशियल हम नॉर्मल एल्गोरिथम से हम सीक्वेंशियल प्रोसेस को करते हैं। जहां पे हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है वहां पे हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग या मशीन लर्निंग को यूज करते हैं। और ऑटोमेटिक लर्निंग है, या फिर आपको देखना है कि जैसे रोबोट किस तरह से काम करता है, तो रोबोट के लिए जो प्रोग्रामिंग होगी वो मशीन लर्निंग में होगी। उसके लिए जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग है, अगर हम बात करें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वो वहां पे कैपेबल नहीं है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बहुत बेहतर तरीके से रोबोट के लिए प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। आपको रोबोट के लिए प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए आपको मशीन लर्निंग का यूज करना पड़ेगा, या डीप न्यूरल नेटवर्क का यूज करना पड़ेगा, या AI की किसी और अन्य लैंग्वेजेज को यूज करना होगा। तो ANN, फजी लॉजिक, ह्यूरिस्टिक, इस तरह से बहुत सारे नए टर्म है। तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग। और दूसरी ओर आती है हार्ड कंप्यूटिंग या ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग, जैसे जावा प्रोग्रामिंग है। तो ये जो प्रोग्रामिंग है ये बेस्ड ऑन बाइनरी लॉजिक, ये बाइनरी लॉजिक पे बेस्ड होती है। इसके लिए प्रोग्राम लिखने होते हैं, जबकि सॉफ्ट कंप्यूटिंग में प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। हमारे पास इनपुट भी है, आउटपुट भी है, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली आपका बन गया। और जो हार्ड कंप्यूटिंग है वो सिक्वेंशियल मैनर में वर्क करती है, और जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग है वो पैरेलल मैनर में वर्क करती है। पैरेलल कंप्यूटेशन भी इसको कहा जाता है। और इसमें जो मशीन लर्निंग है, इसमें ऑटोमेटिक लर्निंग होती है। जैसे आपका एलेक्सा है, एलेक्सा किस पे वर्क करेगा, एलेक्सा में भी मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग होगी। तो एलेक्सा क्या होता है, धीरे धीरे लर्न करने लगती है। अगर आपके घर में एलेक्सा है तो धीरे धीरे वो आपकी फीलिंग्स को पहचानने लगेगी। आप जो कह रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, उसके आंसर्स वो उसके पास रहेंगे, वो आपके क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को वो लर्न करता रहता है। तो ऑटोमेटिक लर्निंग होती है इन मशीन्स की। तो वो कारण क्या है कि इसमें जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग यूज होती है या मशीन लर्निंग का यूज होता है। तो आज के समय में बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल हैं, जैसे हम कहें अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो इसमें भी मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। रोबोट्स में बहुत ज्यादा मशीन लर्निंग का यूज होता है। अब हम ड्राइवरलेस कार की बात करने लगे हैं, जैसे गूगल की जो कार है ड्राइवरलेस कार, तो उसमें भी मशीन लर्निंग का यूज होता है। ऐसे ही नैनो रोबोटिक्स है, या ट्रांस ह्यूमनिज्म की हम बात करते हैं, तो हर जगह मशीन लर्निंग का बहुत तेजी से यूज होने लगा है। और इंडस्ट्री में भी कोई भी प्रोडक्ट अगर डिजाइन किया जाता है तो उसमें मशीन लर्निंग को यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो AI और मशीन लर्निंग दोनों ही यूज होती है। तो जैसे हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक में बहुत ज्यादा AI का यूज होने लगा है। फेसबुक भी आपके पैटर्न को, आपके सर्चिंग पैटर्न को, आप किस तरह की फोटो अपलोड करते हैं, किस तरह की चीजें आप उसमें सर्च करते हैं, तो वो आपके पैटर्न को फाइंड आउट कर लेता है। उसका उसको लर्न कर लेता है तो आपको उसी तरह के एड फिर से वो सजेस्ट करेगा। तो ये इसके बेनिफिट हैं। और इसके अलावा आज की डेट पर हम कहते हैं गूगल एआई या ब्लूमबर्ग ने इसको मशीन इंटेलिजेंस बोला, ऐसी गूगल ने इसको टर्म दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने इसको मशीन लर्निंग बोला। तो ये सारे टर्म लगभग लगभग एक से हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहें या मशीन लर्निंग कहें या कॉग्निटिव कंप्यूटिंग कहें या मशीन इंटेलिजेंस कहें, ये लगभग सभी टर्म एक से हैं। तो शुरुआत में एआई कहा जाता था, धीरे 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 और इसको जो है इसमें जब जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट हुए तो इसके टर्म चेंज होते रहे। तो गूगल ने इसको एआई बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे ही ब्लूमबर्ग ने इसको मशीन इंटेलिजेंस बोला, माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज में कहें तो एआई को ही मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे ही आईबीएम की टर्मिनोलॉजी में इसको कॉग्निटिव कंप्यूटिंग कहते हैं। तो लगभग हैं सारी चीजें एक ही। तो आजकल आईबीएम वॉटसन की जब हम बात करते हैं तो आईबीएम वॉटसन के में भी जो एआई यूज होती है तो वहां पे हम इसको टर्म बोलते हैं कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। तो मशीन लर्निंग के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग है या एसोसिएशन रूल लर्निंग है या डिसीजन ट्री लर्निंग है, इस तरह से बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमारी इन्वॉल्व हैं। और हम इसके एप्लीकेशन भी अलग अलग एरिया में कर सकते हैं मशीन लर्निंग के, जैसे हमको इमेज क्लासिफिकेशन करना है तो इमेज क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट होती है प्रोग्रामिंग वो मशीन लर्निंग। ऐसी क्लस्टरिंग है, क्लस्टरिंग में आप अनसुपरवाइज न्यूरल नेटवर्क का भी यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का भी यूज हो सकता है। ऐसी कोई पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है या स्पीच को रिकग्नाइज करनी है, स्पीच पहचाननी है किसी की, कोई वॉइस किसी की वॉइस को रिकग्नाइज करना है, ऐसी करेक्टर रिकग्निशन है, तो हैंडराइटिंग रिकग्निशन है या टारगेट रिकग्निशन है, ये सारे एप्लीकेशन मशीन लर्निंग के ही हैं। आज के समय में अगर हम देखें कि जैसे आप मोबाइल में ही हम देखते हैं तो मोबाइल हमारी स्पीच को आइडेंटिफाई कर लेता है, हम बोलेंगे तो वो मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, हमारा फेस सामने आएगा, फेस रिकग्निशन, फेस सामने आते ही मोबाइल जो है उसको सेंस कर लेता है, अदरवाइज मोबाइल ओपन नहीं होगा जब तक वो हमारा फेस सामने नहीं आए। तो ये सारे एप्लीकेशन किसके हैं, मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन है। ऐसे फॉल्ट डायग्नोसिस है, ये भी मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज का मतलब यह है कि हमने किसी भी लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं तो उसको प्रोसेस कर रहा है। क्रॉस लैंग्वेज कन्वर्सेशन, और आज के समय में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस को हम एक रियल लाइफ जो है हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज में कोई बोल रहा है तो लाइव कन्वर्सेशन हो सकता है, तो ये स्काइप ने का इसमें बहुत ज्यादा काम है, तो लाइव कन्वर्सेशन का तो ये पॉसिबल हो गया आज के समय में। ऐसे ही मॉनिटरिंग ऑफ द क्रिटिकल इल पेशेंट, तो उनको क्रिटिकल पेशेंट को मॉनिटर करना है तो एआई का यूज होता है मशीन लर्निंग का। ऐसी रेगुलेटरी डिटेक्शन है या डेटा माइनिंग है, डेटा माइनिंग अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट एरिया है क्योंकि आज की डेट में बिग डेटा की बात कर रहे हैं हम, हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, अब उस इंफॉर्मेशन में से हमको जो हमारे काम की चीज है हमको एक्सट्रैक्ट करना है, मीनिंगफुल चीज एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो हम डेटा माइनिंग में करते हैं, तो इसमें भी मशीन लर्निंग का यूज होता है। ऐसे ही फाइनेंशियल प्रिडिक्शन है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने आपको स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन की बात की, तो स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन में मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा उपयोग है इसका, तो वहां पे हम इसमें प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर मार्केट हो, तो या एक्सचेंज रेट हो, तो वो सब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी से आज के समय में ये चीजें हो सकती हैं। ऐसी मार्केट परफॉर्मेंस है, जैसे सुपरमार्केट है तो हमने, हमारे पास डेटा है सुपरमार्केट का, पिछले 10 साल का डेटा है, तो हमने क्या करना है कि उस डेटा से हमने फाइंड आउट करना है कि भाई 20 से 30 साल की उम्र के जो कस्टमर हैं वो किन चीजों को ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो हम इससे परचेज परफॉर्मेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि वो जो क्लास है, वो सेगमेंट है, वो पर्टिकुलर किसी ब्रांड की किसी चीज को बहुत ज्यादा परचेज कर रहा है, तो स्पेशली उसकी मार्केटिंग वहां तक पहुंच सकती है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग केवल उस सेगमेंट को कवर कर सकती है या उसको उसके फोकस करते हुए बनाई जा सकती है, तो इस तरह के काम इसमें होते हैं। फ्यूचर सेल्स है, प्रोडक्शन है, डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हम मशीन लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ही एनर्जी रिक्वायरमेंट है या एनर्जी सी कंजम्पशन है या एनर्जी ऑप्टिमम यूज है, इसमें भी एआई का या मशीन लर्निंग का यूज हो सकता है, बहुत बेस्ट यूज हो सकता है। तो ये बहुत सारे जो यूजेज हैं, जो जो एरिया मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे एरिया ये एप्लीकेशन एरिया जिन पे हम रिसर्च भी कर सकते हैं, जिनमें रिसर्च का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ऐसे ही क्रॉप प्रिडिक्शन है, रिवर फ्लो प्रिडिक्शन है, वेदर प्रिडिक्शन है या वेदर फोरकास्टिंग है, इन सारे फील्ड्स में मशीन लर्निंग का यूज होता है। फॉल्ट प्रिडिक्शन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट प्रिडिक्शन करना है या बहुत हाई कॉस्ट की कोई मशीन है, हमको उसके फॉल्ट को प्रिडिक्ट करना है या हमको उसका ऑप्टिमम यूज को प्रिडिक्ट करना है, तो वहां पे हम मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं। ऐसे ही इन्वायरमेंटल रिस्क, जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा बरसात के समय में रेनी सीजन में जो क्लाउड बस्ट है, इसको प्रिडिक्ट करना है, तो ये काम भी मशीन लर्निंग पे किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन में बहुत सारे काम हो सकते हैं। मॉडलिंग में है, जैसे मॉडलिंग में बहुत सारे एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग के, जैसे प्रोसेस कंट्रोल है, सिस्टम कंट्रोल है, केमिकल स्ट्रक्चर कोई प्रिपेयर करना है तो वहां पे मशीन लर्निंग, जबकि ये केमिकल केमिस्ट्री का फील्ड है परंतु यहाँ पे भी ये कंप्यूटर साइंस बड़ा यूजफुल होता है ये जो मशीन लर्निंग है। ऐसी डायनेमिक सिस्टम डेवलप करना है, सिग्नल कंप्रेशन का वर्क है, प्लास्टिक मोल्डिंग का है, वेल्डिंग कंट्रोल है, रोबोट कंट्रोल है, तो इन सब में मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी अन्य सब्जेक्ट में, किसी भी अलाइट पे हम रिसर्च भी कर सकते हैं मशीन लर्निंग को लेते हुए। तो होता क्या है कि पहले जब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करते थे तो उसमें हम इनपुट लेते थे और इनपुट जो हमारा है उसके फीचर एक्सट्रैक्शन का काम खुद करना पड़ता था, परंतु जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं तो फीचर एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर आउटपुट जनरेट करते हैं। तो मशीन लर्निंग की भी दो कैटेगरी है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। तो सुपरवाइज न्यूरल नेटवर्क और अनसुपरवाइज न्यूरल नेटवर्क। तो सुपरवाइज में क्या होता है कि जहां पे सुपरवाइज्ड के केस में वी हैव, व्हेन वी हैव इनपुट एज वेल एज आउटपुट, जब हमारे पास इनपुट भी है आउटपुट भी है तो तब हम उसको सुपरवाइज्ड बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उन एग्जांपल्स से ट्रेन कराते हैं। सपोज हमारे पास 10,000 डेटा है, 10,000 इनपुट है और करस्पोंडिंग उनके आउटपुट है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक नेटवर्क डेवलप करते हैं, एक मॉडल डेवलप करते हैं, उस मॉडल को इससे ट्रेन करते हैं और फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि अगर वो सही रिजल्ट दे रहा है तो उसको हम अप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह से अनसुपरवाइज नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क होता है जिसमें हम क्लस्टरिंग करते हैं, जहां पे हमारे पास केवल इनपुट है आउटपुट नहीं है, तो वहां पे हम क्लस्टरिंग करते हैं। तो इस तरह से डिसीजन ट्री है या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, तो ये भी हमारे बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग के। तो आज के समय में मशीन लर्निंग बड़ा इम्पोर्टेंट फील्ड है, बड़ा इमर्जिंग फील्ड है और इसके बिना कि कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री की डिमांड है। बहुत सारी जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं वो हर एक सॉफ्टवेयर में मशीन लर्निंग के यूजेज को प्राथमिकता देते हैं। तो लर्नर्स को और सभी दोस्तों को नमस्कार। तो इसी के साथ अगले सेशन में हम मशीन लर्निंग के अन्य यूजेस के बारे में बात करेंगे।